विष्णेस्तु त्रिणी रूपाणि पुरुषाख्यान्त्यो विदुः एकं तु महतः सृष्टः द्वितीयं अण्डस्थितम् अण्डसंस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विवोचेते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्णा का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्रकट है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्वेशेश्वादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसे कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंग शक्तियां होती है।
Is a complete energetic person, and he possesses different separated and internal energies.
आखिरी पैराग्राफ। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भौतिक शक्ति आठ रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम पांच पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें पांच इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकवादी अपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्णा को नहीं जानते। 24 बताते हैं यहाँ पे मीडिया अहंकार मैं हूँ तथा या मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण वे नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है।
Intelligence refers to the total material creation called the Mahatattva. Therefore, from the 8 separate energies of the Lord are manifested the 24 elements of the material world, which are the subject matter of Sankhya, atheistic philosophy. They, that's 24, are originally obvious from Krishna's energies and are separated from him, but atheistic Sankhya philosophers with a poor fund of knowledge do not know that Krishna is the cause of all causes.
Nastik Sankhya Darshak jo hai, वो भगवान को नहीं मानते हैं। रिपोर्ट यहाँ खत्म होता है। प्रभुपाद का जो तात्पर्य है यहाँ खत्म हो गया है। क्लास से बात करेंगे। भगवत की जो है आध्यात्मिक किताब में मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए आध्यात्मिक। लेकिन इसमें तो कृष्णा यहाँ पे जो है भौतिक चीजों के बारे में कैसे बात कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पे? ये क्या सही है? ये क्या सही है आध्यात्मिक किताब में भौतिक चीजों के बारे में बात करना? और कृष्ण ये भी कहते हैं आखिर में, छठवां अध्याय के आखिर में कहते हैं सारे जो विधि हैं जो आत्मा को ऊपर उत्तम चेतना में ले जाते हैं, सब विधियों में भक्ति योग जो है सर्वोत्तम है। ध्यावान भजते यो मां समय युक्ततमो मतः, भक्ति योग जो है सबसे उत्तम विधि है। और यहाँ पे कृष्ण कहते हैं ये कैसे करना है इसको मैं समझाता हूँ। उत्तम सबसे उत्तम सर्वोत्तम योग को कैसे करना है ये मैं समझाता हूँ। और फिर वो भौतिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं क्यों। उसके कई जवाब हैं, कई उत्तर हैं इसके प्रश्न। इनमें से एक है, अगले श्लोक में कृष्ण जो है आत्मा के बारे में आध्यात्मिक के बारे बात करते हैं। अप्रेयम इतस्तनिया प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूतान। तो ये जो है आध्यात्मिक शक्ति है और वो आत्मा है, जीवात्मा। हम जीवात्मा हैं, फिर भी कहीं भी देखिए आप चारों तरफ ऊपर नीचे या दाएं बाएं कहीं भी देखिए, आगे पीछे कहीं भी देखिए आप क्या देखते हैं। भौतिक चीजें, भौतिक विषय, मैटर। लेकिन हम आध्यात्मिक कण हैं, आत्मा है, जीवात्मा है, क्योंकि हम जो है यहाँ हम जो है कृष्ण के पास रहने वाले हैं। ऐसे आध्यात्मिक जगत में जहाँ चारों तरफ आध्यात्मिक चीजें हैं, तो यहाँ पर तो सब भौतिक की विषय, भौतिक विषय है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। यहाँ पर आठ सांख्य योग में 24 एलिमेंट्स की बात होती है, तो यहाँ पर आठ की बात कृष्ण कर रहे हैं। आठ प्रकार के विभिन्न प्रकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जो है यहाँ रहने वाले नहीं है, ये हमारा सही यहाँ से कैसे हम बाहर निकलेंगे, तो इसी के बारे में कृष्णा जो है बताने वाले हैं हमको। जैसे माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन जो भौतिक चीज है उसको जो है हम अगर आध्यात्मिक चित्रकण से जोड़ें तो इसके पीछे जो कारण है उसका पता चलता है कि कृष्ण जो है मूल कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह गोविंद सर्व कारण। तो कृष्ण ही मूल है हर एक चीज का, उनका कोई सोर्स नहीं है, मूल नहीं है उनका, वे अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, और वही आदि हैं और उन्हीं से सब कुछ निकलता है। और वो ईश्वर है जो नियंता है। वो परम ईश्वर है, परम नियंता है। हम लोग जो है छोटे छोटे ईश्वर हैं, बहुत छोटे अणु लघु, हम किसी थोड़ा बहुत चीज से जो है नियंत्रण करते हैं। जूते कहीं रखते हैं हम, जूते वापस मिलने का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। तो हमारा क्या है, व्याख्या में प्रभुपाद कहते हैं ये दो अहंकार के दो भागों के बात में कहते हैं। अहंकार, तो मैं कौन हूँ ये अहंकार है। दूसरा भाग है जो मेरा है, मैं और मेरा, अहम ममा, ये दो भाग हैं अहंकार। और फॉल्स ईगो जो मिथ्या अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है हमको ये फोर्स करता है कि मैं वो हूँ जो वास्तव में मैं नहीं हूँ, ऐसे सोचने में हमें विवश करता है। जैसे मैं ये शरीर हूँ, लेकिन मैं अगर जीवात्मा हूँ तो अहंकार यानी मिथ्या अहंकार ये सोचने में, ऐसे सोचना सोच پیدا کرتے ہیں ہم میں کہ ہم یہ شریر ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریر ہیں. تو اگر ہم شریر ہیں ایسے سوچنے لگتے ہیں تو شریر سے کچھ اور جڑ جاتا ہے, تو شریر سے جو آتا ہے وہی من ہے, تو شریر کچھ کام کرتا ہے. تو میرا کیا ہے, تو میرے کرم کے پھل جو ہیں وہ میرے ہیں. جیسے تو میں ایک کارپینٹر ہوں, تو میں لکڑی کو لیتا ہوں, پھر کیلوں کو لے کے کچھ بناتا ہوں, ایک ٹیبل بناتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یہ ٹیبل جو ہے میرا ہے, یہ میز جو ہے میرا ہے. اس ٹیبل کو, میز کو جو میں ایک دکان پہ لے جاتا ہوں, تو یہ میز لے کے آپ مجھے کچھ سبزی اور یا گیہوں دیجیے. تو دوسرا ابھی جو گیہوں میرے ہو گئے ابھی وہ میرا ہے. تو پیسہ جو ہم کماتے ہیں کہتے کہ وہ میرا پیسہ ہے, میں اور میرا. جو بھی یہ شریر سے جڑے ہیں وہ, جیسے میری پتنی یا میرے بچے یا میرا گھر, میرا بینک بیلنس, یہ سب میرے ہیں, میں اور میرا. اہم مما یہی ودیا اہنکار کا جگت ہے. ابھی سارے میں اور میرے ہیں, تو جو میں سوچتا ہوں میرا ہے اور جو دوسرا سوچتا ہے کہ میں اس کا ہے, اس میں کچھ اس میں جو ہے سنگھرش ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہیں لاس بنائے گئے ہیں, جو وبھن پرکار کے نیم بنائے گئے ہیں کہ کون اور کس کا ہے, یہ سب مایا کا بھاگ ہے. تو دو میں وورن دیتا ہوں اس کا. ایک ہے مدیا ہنکار کہاں سے آتی ہے, ہم لوگ اس برہمانڈ میں کہیں ہیں اور یہ شکتی ہے جو مدیا ہنکار جو ہمیں نینترن میں کرتی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئی ہے مدیا ہنکار. تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو بولنے والا ہوں, یہ سمت بھگوت بھاگوتم اسکند پانچواں ادھیائے سے میں, جہاں مہا وشنو کہتے ہیں اس کو اپنے شائن پہ لیتے ہوئے ہیں, آنند شیش کے اوپر لیتے ہوئے ہیں اور اپنی لیلائیں رچا رہے ہیں رما دیوی کے ساتھ, جیسے لکشمی نارائن کے ساتھ, جیسے سیتا جو ہیں رام کے ساتھ ہیں, رادھا جو ہیں وہ کرشن کے ساتھی ہیں. مہا وشنو جو ہیں ان کے آنترنگ شکتی ہے, ان کا نام ہے رما دیوی. تو رما دیوی کے ساتھ وہ بھوگ رہے ہیں, آنند لے رہے ہیں. تو بھاگوتم یہ کہا گیا وہ کرشن کے وسار ہیں اور وہ اپنے آنترنگ شکتی سے کچھ محسوس کرتے ہیں, اور وہ محسوس یہ کرتے ہیں دور میں یہ دیکھتے ہیں تو آبھاس رما دیوی کا جو ہے ریفلیکشن دیکھتے ہیں پرتیبمب, اور ان کا نام ہے چھایا دیوی. پرتیبمب رما دیوی کا جو پرتیبمب ہے ریفلیکشن, तो वो उनको एक दासी के साथ दासी माना जाता है उसको, और विष्णु जो है उस छाया देव को कुछ काम सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि छाया देवी जो है वो व्याकुल हैं कि कोई सेवा नहीं है उनकी, और वहाँ पर सिर्फ प्रधान है जो अप्रकट भौतिक शक्ति है, और छाया देवी जो है अपने आप को अधूरा मानती है, क्योंकि जो अप्रकट स्थिति में विष्णु के जो बॉडी है शरीर है उसमें कई जीवात्मा है, और वो प्रेम पूर्वक विनिमय भगवान के साथ रखते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, समग्रता जो है जीवात्मा को ही वो भी महसूस करते हैं, इस समग्रता को संपूर्ण करते हैं। तो विष्णु जो हैं ये छाया देवी की तरफ या प्रधान की तरफ अपनी दृष्टि प्रसार करते हैं, तो इस दृष्टि से वो छाया देवी से संपर्क करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते लेकिन दृष्टि के द्वारा, और इस दृष्टि के साथ काल शक्ति भी जाती है, और काल शक्ति के साथ जीवात्मा भी जाते हैं, और वो भौतिक शक्ति में जो है इम्प्रेग्नेट किए जाते हैं। तो ये जो है अप्रकट भौतिक शक्ति है, जैसे कोई एक बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ बहुत सारी चीजें इधर उधर पड़ी हैं, तो महाविष्णु की जो दृष्टि के साथ जरिए रमा देवी और काल शक्ति जो है दृष्टि में जो है, तो जो है इन सब चीजों को भौतिक चीजों को जो है अलग अलग करने लगते हैं, करने लगता है जो काल शक्ति, और सबसे पहले जो अलग होता है वो है अपना दोस्त विद्या अहंकार है, और ये आखिर में ही वापस जाता है फिर विद्या अहंकार, और ये विद्या अहंकार त्रिगुणों से इंटरैक्शन करती है, उनसे मिलकर और भी तत्व पैदा होते हैं, और भी तत्व पैदा होते हैं, अलग होने लगते हैं अप्रकट भौतिक शक्ति से, तत्वगुण और विद्या अहंकार के मिलने के कारण मन पैदा होता है, और विद्या अहंकार और रजोगुण के साथ मिलकर भौतिक बुद्धि को पैदा करते हैं, विद्याहंकार मोड ऑफ इग्नोरेंस से पंचभूत पैदा करते हैं, तमोगुण से फिर उनसे और 15 पैदा होती है मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण से 5 विषय इंद्रिय दोषे 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 15, तो तमोगुण में जो है 20 तत्व हैं, और मन और बुद्धि 22 और विद्या अहंकार 23, एक और है 24 में बचता है, तो वो यहाँ पे महातत्व कहा गया है, 24वां तत्व है महातत्व कहा गया है, वो जो फैक्ट गोडाउन जो उसके हम जिक्र करते हैं। दूसरा विवरण इसका है,
this is chapter 7.
सातवां अध्याय चौथा श्लोक भगवद गीता में सांख्य के बारे में चर्चा करती है। तो भक्ति शास्त्री के बारे में पढ़ा होगा। भगवद गीता में तीन भाग हैं। दूसरे अध्याय में सांख्य के बारे में बताते हैं कृष्ण। वहाँ पे 39 तत्वों के बारे में बोलते हैं। 39 जीवात्मा और भौतिक संसार के बीच जो विभिन्नता है उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं भौतिक के 8 विभिन्न भाग हैं और फिर जीवात्मा है संख्या। फिर 13वें अध्याय में तीसरा सांख्य के बारे में बताते हैं। तीसरी बार 13वां अध्याय में भगवद गीता में कृष्णा अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से तो दो को तीन गुना करें तो 6 होता है। तो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और आध्यात्मिक नॉलेज और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान और ज्ञान का विषय पुरुष और प्रकृति। तो अर्जुन कृष्ण के और सांख्य समझाइए कृष्ण को उनके बारे में। मैं श्लोक पढ़ने वाला हूँ। 13वां अध्याय में मैंने 24 तत्व जो बताए वो यहाँ पर हैं। तो 24 के जो सम्मिलित रूप है उसके बारे में बताते हैं। चौथवां श्लोक 13वां अध्याय भगवद गीता। कालशक्ति आती है, 24 तत्वों को वो अलग करती है और फिर उनमें जो शक्ति प्रदान करती है विकार जो जो और चीजों के साथ सम्मिलित होते हैं। आत्मा जो है किसी प्रकार के विकार नहीं है, उसमें कोई चेंज बदलाव नहीं होता आत्मा में, जीवात्मा में। दूसरे अध्याय में यह कहा गया है कि जीवात्मा जो है कभी भी बदलते नहीं है, लेकिन भौतिक तत्व जो है हमेशा बदलता रहता है क्योंकि काल शक्ति जो है उसको बदल उसको जो है आगे बढ़ाती रहती है, उसमें बदलाव लाती रहती है। मैं यहाँ पर जब आया था ये बिल्डिंग नहीं था, काफी परिवर्तन हो चुका है इस बिल्डिंग में। लगता है कि कृष्णा का एक प्लान था तो भक्तों के लिए जो बिल्डिंग बनाया जाए तो कृष्ण ने जो है उसको अनुमति दी। बहुत ही अद्भुत लेकिन कुछ दिनों के बाद ये गिर जाएगा क्योंकि ये भौतिक पदार्थ है, लेकिन हम इसको जो है कृष्ण की सेवा में सौंपते हैं। जो भौतिक शक्ति जो है जब वो उसका मेल होता है और चीजों से तो जो है इच्छा और द्वेष पैदा होता है, आनंद और व्याकुलता पांच इंद्रिया इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसके अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था तो अगला श्लोक में कहा गया है जीवात्मा जो है क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र में जो है ये सब चीजें हैं, लेकिन हम इनसे अलग हैं। जीवात्मा अलग मेरा एक गुरु भाई है, मैं जब 20 साल की उम्र से था 20 साल का मैं हरे कृष्णा टेम्पल बॉस्टन में था और 3 महीने के बाद मेरे गुरु भाई चैतन्य के साथ मंदिर में आ गए। वो कई किताबें पढ़ते थे और लिखते थे और कई सालों के बाद वो कहीं और गए। कई सालों के बाद मुझे देखा, मैं बहुत खुश था, तो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा ये सब किताब में लिखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ हमारे भक्त इस सरल चीज को समझें तो बहुत ही प्रगति कर सकते हैं। तो वो ये है कि हम ये शरीर नहीं है, तो मैं जो है 10 भाग में एक सेमेस्टर में चलाता हूँ जिसमें यही विषय का चर्चा होता है कि मैं ये शरीर तो भौतिक तत्व और जीवात्मा और ये सब चीजों के बारे में बताने के बाद ये पता चलता है कि इन सबके नियंता है जो कृष्ण है। भौतिक तत्व और जीवात्मा के मेल से जो है ये सृष्टि होती है और इन दोनों का नियंता कृष्ण है, इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस है। हम जो है आध्यात्मिक कण है और हम भौतिक चीजों को जो है नियंत्रण करते हैं, लेकिन हमें इसका इनका भोग नहीं करना चाहिए हमें भौतिक विषयों का, क्योंकि फिर हम जो है भौतिक जीवन अगर हम बिताने लगे इसे जो है बहुत बाधाएं आएंगी। छठवा अध्याय में आखिर में श्रद्धावान भगते माँ कृष्ण कहते हैं, तो श्रद्धा के साथ अगर हम भक्ति करें तो भौतिक संसार को जो हम पार कर सकते हैं। हमारा इस भौतिक संसार से कोई संबंध क्या है और कृष्ण का क्या संबंध है, तो हम ये आध्यात्मिक सोच या भाव अगर हम रखें भगवद गीता को पढ़ने से जो है हमको ये आध्यात्मिक अवगाहन या सोच या भावना प्राप्त होगी। ज्ञान चक्षुषा तो शास्त्र के द्वारा जो है कृष्ण जो है शास्त्र के द्वारा देखते हैं, तो हम भी शास्त्र के द्वारा देखें तो हम भी कृष्ण के समान होंगे। हम अपने चक्षु से नहीं लेकिन ज्ञान चक्षु से या शास्त्र के चक्षु से देखना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रकृति मेरी है और मैं इसका भोग करता हूँ। मैं एक बार अपने माता जी और पिताजी से बात कर रहा था भक्त होने के बाद, आप लोग भगवान है हरे कृष्णा फैमिली में आप पैदा हुए, लेकिन मैं हरे कृष्णा फैमिली में पैदा नहीं हुआ। जो मेरे पेरेंट्स हैं क्रिश्चियन थे, लेकिन वो खुश थे कि मेरा जो बेटा है हरे कृष्णा भक्त। तो सच्चा थी पहले जो हमारे जो धर्म है उसमें क्या दोष है, तो मैं नहीं चाहता था कि उनको दुख पहुँचाऊँ इसी तरह। मैं दुख भी कहूँगा वो कहेंगे कि आप हमारे धर्म को जो है तिरस्कार कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि इस तरह कुछ कष्ट पहुँचाऊँ। मैं बहुत ही केयरफुल ले रहा हूँ। मैं कहने लगा, वो कह रहे थे कि बाइबल में भगवान कहते हैं कि हमें जो है नियंत्रण देते हैं, भगवान कहते हैं कि हमें जो है इस भूमि और यहाँ के जो पशु पक्षी हैं उनके ऊपर हमें नियंत्रण देते हैं, डोमिनियन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब मैंने कहा कि प्रोटेक्शन, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ये नहीं कि हम उनको विनाश करें। हम जब उसका नियंत्रण लेते हैं इन चीज़ों का, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका विनाश करें, इसका मतलब यह है कि हम उनकी रक्षा करें। तो वो मेरी बात को नहीं माने, लेकिन गुस्सा नहीं किया। क्योंकि वो कहते हैं कि सारे जहां पूरे संसार में लोग ये कहते हैं कि ये पृथ्वी और ये पशु पक्षी जो है हमारे नियंत्रण के लिए, हमारे भोग के लिए है। इसी चीज को मैं दूसरी तरह बता दूंगा।
कहानी
कार्तिक के समय में जो वृंदावन बिताता है और कुछ सेवा करना चाहता था जन्म वृंदावन में कार्तिक में, तो मैं वृंदावन में जो है मैं पढ़ाने का सेवा करके आने कदम्ब कानन स्वामी के बाद सिंपल प्रेसिडेंट थे वृंदावन में कदम्ब कानन स्वामी, और उन्होंने कहा आप कुछ सेवा कर सकते हैं। एक व्यक्ति प्रभुपाद कृष्ण समाधि को बनाने में बहुत मदद की मेरी, पंचरत्न जो मायापुर में बैठता है, अब वो जयपुर गए हुए हैं जयपुर में, तो आप जयपुर जाइए और जो है अपनी आप प्रसंग दीजिए उनको। मैं वहाँ पे गया था पंचरात्रा, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, तो उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी में ऑफ जयपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हमने बनाया, तो मैं वहाँ पे गया यूनिवर्सिटी हॉल में, काफी बड़ा हॉल था वो, तो भरे हुए थे लोगों से भरा हुआ था, वो मुझे नहीं जानते थे और मैं उनको नहीं जानता था। मैंने सोचा एक प्रश्न पूछूंगा उनसे शुरुआत में, मैंने ये कहा तो ध्यान से सुनिए जो मैं जो कहने वाला हूँ, उसके बाद आप अपना हाथ उठाइए अगर वो आप मेरे से मैं जो कह रहा हूँ उससे आप उसको आप मानते हैं। धर्म का जो लक्ष्य है, धर्म का लक्ष्य जो है आप अपना जीवन जो है धार्मिक नियमों के अनुसार बताएं ताकि इस जीवन में अब जो है सात्व गुण में अब जीवन बिताएं, उसके फल जो है जो पुण्य के फल जो है आपको मिलेंगे और आपको सौभाग्य प्राप्त होगा और इस जन्म के बाद जो है आप ऊपर के वाले लोकों में उन्नत लोकों में जैसे स्वर्ग लोक में वहां पहुंच जाएंगे। कितने लोग मानते हैं इस मैंने जो कहा उसे मैंने बता कितने लोग मेरी बात को मानते हैं? कुछ लोगों ने हाथ उठाया, सब लोग जो हैं हाथ उठाए, सब लोग हाथ उठाए, सब मानते हैं। तो मैंने बोला कि कोई विभिन्न राय रखते हैं क्या? तो आखिर में एक लड़की थी जो हाथ उठाए पीछे बैठी हुई थी। मैंने कहा आपका क्या सोच है, धर्म का क्या लक्ष्य है? और लड़की ने कहा धर्म का लक्ष्य है कृष्ण को जानना और कृष्ण को भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं और शास्त्र में यह बताया गया है किस तरह हम भक्ति के द्वारा। मैंने ये कहा अरे वाह, आप तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ती होंगी मेरे ख्याल में। और उस लड़की ने कहा हाँ मैं पढ़ती हूँ। तो मेरे जो माता पिता हैं वो प्रभुपाद की किताब उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्होंने जो है मुझे पुण्य कर्मों में लगाया, इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। लेकिन पुण्य के साथ साथ वो ये भी सोचते थे कि हम जो है सत्वगुण में रहते हुए हम भोग सकते हैं लोगों को जो है दयालु रहो और भोगने लगो क्योंकि यही जो है भगवान की इच्छा है, ऐसे सोचते थे। भगवत के जो संदेश है अलग है कि सब भक्ति जगत जो है भगवान की प्रॉपर्टी है, यही मालिक है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा भी मेरी शक्ति है। तो जब हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, क्या वास्तव में आपका शरीर है? नहीं, ये कृष्ण के तत्वों से बना हुआ है और मेरे इच्छा के प्रतिकूल ये शरीर जो है खत्म होने वाला है। तो क्या यह जीवात्मा मेरी है? तो नहीं, ये जीवात्मा भी कृष्णा का भाग है, तो मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मेरी है, वो है मेरी इच्छा, स्वतंत्रता। तो मैं जो है अपने कृष्ण के साथ अपना संबंध को जो है मैं चुन सकता हूँ, ये मेरा इच्छा, ये स्वतंत्रता है और कुछ मेरा नहीं है। तो क्रिश्चियंस का जो सोच है उससे जो है कृष्ण जो है जो भौतिक सोच को जो है इस तरह आपको व्यतिरे करते हैं। तो कृष्णा ने जो हमें बुद्धि दी है और सब दुख दिया है, कृष्ण की सेवा में अगर हम लगाएं सब ठीक रहेगा। नंद महाराज के पास बहुत ही बड़ा धन था, अम्बरीश महाराज के पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, लेकिन सबको जो है उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया, पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लगाया और पूरी तरह विरक्त थे, किसी चीज से उनको आदत नहीं थी। निर्बंध कृष्ण समझे युक्तम वैराग्य में छपे तो जो आप भक्ति शास्त्र पढ़ रहे हैं आपको इस श्लोक के बारे में पता होगा कि रूप गोस्वामी का शिक्षा है तो वैराग्य का जो सच्ची जो वैराग्य है वो जो है ये है कि सब चीजों को जो है कृष्ण की सेवा में उपयोग करें। तो भगवद गीता में ये पता चलता है कि सब कुछ कृष्ण का है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग यहाँ पे एक के बाद एक श्लोक पढ़ते हैं इतवार का दिन। तो बाद में नौवां अध्याय में फिर कृष्ण जो है भक्ति के बारे में बताएं। सब कुछ कृष्ण का है, वही मालिक है और हम उनको सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। थैंक यू वेरी मच।